एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल न बनो बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो।
परमान करूं है मैं
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, अपने शिष्य को झुकाते हैं। क्या परमेश्वर हमारे मनों को और हृदयों को खोल दे जब हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं। मैं मेरे श्रोताओं के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ पिता, उन्हें तेरे वचन को समझने के लिए मदद कर और तेरे वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे सामर्थ के द्वारा तेरे वचनों को प्रस्तुत कर सकूं। हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। आज हम अध्ययन करेंगे व्यवस्था विवरण 6:4, मत्ती 28:19 और मत्ती 6:9 और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1:14-18 पदों को देखेंगे। पौलुस प्रेरित लिखते हैं रोमियो 11:33-36 में, यहाँ कहता है, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है, क्योंकि प्रभु की बुद्धि को किसने जाना या उसका मंत्री कौन हुआ या किसने पहले उसको कुछ दिया है जिसका प्रतिफल उसे मिलेगा। रोमियो 11:33-36। ईश्वर के अस्तित्व और प्रकृति के रहस्यों में से एक यह है कि ईश्वरत्व तीन दिव्य सत्ताओं से मिलकर बना है जो उद्देश्य और कार्य में एकीकृत हैं किंतु व्यक्तित्व में भिन्न हैं। बाइबल का एक यह रहस्य है, रहस्यों में से एक रहस्य है। ईश्वर का स्वरूप एक रहस्य है। हम इस विषय पर श्रद्धापूर्वक विचार करते हैं और यह मानते हैं कि जो बातें प्रकट नहीं हुई हैं उनके बारे में अटकलें लगाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। बाइबल कहती है जो कुछ हमें दिया गया है उसे हम जानते हैं, सुनते हैं, जो नहीं गया है, नहीं दिया गया है, रहस्य है, उसे परमेश्वर पर छोड़ देते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा हमें रखना है, उस पर भरोसा हमें करना है। मूसा के दिनों में परमेश्वर की एकता की घोषणा की गई थी, प्रभु हमारा परमेश्वर एक प्रभु है, व्यवस्था विवरण 6:4 पद कहता है। यीशु ने इसे उद्धृत किया और कहा कि यह सभी आज्ञाओं में से पहली आज्ञा है, मरकुस 12:29। अगर हम देखेंगे तो यह बात हम पाएंगे। इसलिए ईसाई धर्म एकेश्वरवादी है। ईसाई धर्म एक ही ईश्वर में विश्वास करती है। फिर भी यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दे। यह हम पढ़ते हैं मत्ती 28:19 में। यह दर्शाता है कि एक में तीन व्यक्ति हैं। यीशु ने अपने शिष्यों को परमेश्वर को हमारे पिता कहकर पुकारने कहा। मत्ती 6:9 में यह हम पाते हैं यीशु ने परमेश्वर पिता को हमारे पिता कहकर संबोधित करने सिखाया। अपने चेलों से इस तरह उसने सिखाया। उसने स्वयं परमेश्वर को अपना पिता कहकर संबोधित किया। यूहन्ना 11:41। उसके बपतिस्मा के समय पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उस पर उतरा। इसे हम पाते हैं मत्ती 3:16 पद में। स्वर्ग से एक आवाज आई और कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है। यह लिखा है मत्ती 3:17 पद में। ये और अन्य ग्रंथ हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारा अद्भुत परमेश्वर एक में तीन व्यक्तित्व हैं। यह एक आश्चर्यजनक रहस्य है, लेकिन यह एक सत्य है जिसे हम विश्वास के द्वारा स्वीकार करते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र इसे प्रकट करता है और इसे हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमसे किस तरह अपना अनुग्रह दिखाता है और किस तरह अपना प्रेम दिखाता है। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जो कि हम पढ़े व्यवस्था विवरण 6:4 में। व्यवस्था विवरण 6:4 में कहता है, प्रभु हमारा परमेश्वर एक प्रभु है। इतिहास में लोगों ने कई देवताओं की पूजा की है, लेकिन सर्वोच्च देवता केवल एक ही है। अपने आसपास के राष्ट्रों के विपरीत जो बहुदेववादी थे, इब्रानियों ने एक सच्चे परमेश्वर में विश्वास किया। विश्वास का यह अंगीकार 3000 से अधिक वर्षों से हिब्रू जाति का नारा रहा है। यशाया 43 सच्चे परमेश्वर की विशेषता बताता है, यह आपके लिए सहायक हो सकता है। आइए हम इसे देखें। यशाया 43 का एक पद कहता है, यहाँ इस तरह लिखा है, हे इसराइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। और पद 11 और 12 में हम पढ़ते हैं, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उधार करता नहीं, मैं ही ने समाचार दिया और उधार किया और वर्णन भी किया जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था, इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो, यहोवा की यही वाणी है। और हम पढ़ते हैं पद 15 में, यशाया 43 का 15 में कहता है, मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इज़राइल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूँ। प्रकृति भी हमें ईश्वर के बारे में बताती है, यह हम भजन संहिता 19 अध्याय में हम देख सकते हैं, विशेषकर 19 का 1 से 6 में। आइए हम भजन संहिता 19 का 1 पद में देखें, भजन संहिता 19 का 1 पद को पढ़ें। कहता है, आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। यह हमें बताता है कि एक ईश्वर है जिसने इसे अस्तित्व में लाया, क्योंकि इसने खुद को नहीं बनाया। यह हमें ईश्वर की महानता के बारे में भी बताता है, क्योंकि केवल सच्चा ईश्वर ही सितारों की आकाशगंगा के साथ विशाल ब्रह्मांड को अस्तित्व में ला सकता था। केवल सच्चा ईश्वर ही प्रकृति के सभी पहलुओं को इसके अनंत विस्तार और सूक्ष्म संरचना के साथ डिजाइन कर सकता था। हमारे लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि हम प्रकृति से परे सच्चे परमेश्वर की ओर देखें और उसकी आराधना करें, जिसने सितारों, दुनिया और उसमें मौजूद हर चीज को बनाया है। यही सच्चा परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि की रचना की, सारे चीजों को बनाया है। आइए हम मत्ती 28 का 19 पद को पढ़ें। इसमें लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और 20 पद कहता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। इस बपतिस्मा सूत्र में यह ध्यान देने योग्य है कि नाम शब्द एक वचन में है, लेकिन इसके बाद 3 नाम है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पुराने नियम में त्रिएक परमेश्वर के बारे में हमें उत्पत्ति 1:1-3 में संकेत मिलते हैं। इस अंश में ईश्वर के लिए हिब्रू शब्द एलोहिम है, और जो बहुवचन रूप में है, फिर भी क्रिया शब्द 12 सृजित, जो सृजित शब्द है, एक वचन रूप में है। ईश्वर बोलता है, अर्थात वह सृष्टि में वचन का उपयोग करता है। हम इसे पाते हैं यूहन्ना 1:1 में, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सृष्टि और ब्राह्मण पृथ्वी और ब्राह्मण की सृष्टि की, इसे हम पाते हैं। और ईश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यहाँ कम से कम 1 से अधिक व्यक्तियों का संकेत प्रतीत होता है। इस घोषणा में हम और हमारे के उपयोग पर ध्यान दीजिए। हम मनुष्य को अपनी छवि में बनाए, परमेश्वर कहता है उत्पत्ति 1:26 में। बहुवचन हमको प्रारंभिक चर्च धर्मशास्त्रियों द्वारा लगभग सर्वसम्मति से ईश्वरत्व के 3 व्यक्तियों के सूचक के रूप में माना जाता था। स्वर्गीय तिकड़ी के 3 जीवित व्यक्ति हैं। इन 3 महान शक्तियों, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, जो लोग जीवित विश्वास के द्वारा मसीह को स्वीकार करते हैं, उन्हें बपतिस्मा दिया जाता है, और ये शक्तियाँ मसीह में नया जीवन जीने में उनके प्रयासों में स्वर्ग के आज्ञाकारी विषयों के साथ सहयोग करेंगे। ये हम पढ़ते हैं एवेंजेलिज्म किताब कि पृष्ठ 615 पृष्ठ में पुराने नियम के भविष्यवक्ता यशायाह अपने पुस्तक के 9वें अध्याय के 6वें पद में जो भविष्यवाणी लिखी है वह हमें ईश्वर के त्रियत्व की अवधारणा को समझने में मदद करती है। आइए हम इसे पढ़ें। यहाँ लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। त्रियत्व की अवधारणा हमें समझने में मदद करती है कि परमेश्वर किस तरह प्रेम करता है। मत्ती 6:9 में यीशु मसीह अपने चेलों को परमेश्वर पिता को हमारे पिता कह के संबोधित करने सिखाया, और तू जो स्वर्ग में है और तेरा नाम पवित्र माना जाए, इस तरह का यीशु ने अपने शिष्यों को बतलाया। दानियल को परमेश्वर का दर्शन मिला, जिसे वह दानियल 7:9-10 में वर्णन किया है। पिता की ऐसी तस्वीर देखकर किसी को भी विस्मय होना चाहिए। हमारा पिता हमसे हमेशा के लिए प्यार करता है, लेकिन हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए कि हम उसके प्रति उसके नाम को आदर से इस्तेमाल करें। यीशु मसीह पिता का प्रत्यक्ष प्रतिरूप है। इसे हम पढ़ते हैं इब्रानियों 1:2-3 में। यीशु मसीह परमेश्वर को प्रेम के परमेश्वर के रूप में दुनिया के सामने प्रकट करने के लिए आया, जो दया, कोमलता और करुणा से भरा हुआ है। शैतान ने जिस घने अंधकार से ईश्वरत्व के सिंहासन को ढकने का प्रयास किया था, उसे दुनिया के उद्धारक यीशु ने दूर कर दिया, और पिता फिर से लोगों के सामने जीवन के प्रकाश के रूप में प्रकट हुआ। जब फिलिप यीशु के पास यह अनुरोध लेकर आया कि हमें पिता को दिखा दे और यही हमारे लिए काफी है, फिलिप यीशु का एक शिष्य था, तब उद्धारकर्ता यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं इतने लंबे समय से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता फिलिप? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, फिर तू क्यों कहता है हमें पिता को दिखा? मसीह स्वयं को पिता के प्रतिनिधि के रूप में दुनिया में भेजे जाने की घोषणा करता है। अपने चरित्र की महानता में, अपनी दया और कोमल करुणा में, अपने प्रेम और भलाई में, वह हमारे सामने दिव्य पूर्णता के अवतार, अदृश्य ईश्वर की छवि के रूप में खड़ा है। वन एलन जी वाइट कहती है, टेस्टिमनीज फॉर द चर्च, खंड 5, उसका पृष्ठ 738-739 में, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिनिधि बन के इस पृथ्वी पर आया, उसका प्रेम और उसका करुणा को दिखाने आया। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का प्रत्यक्ष प्रतिरूप है। इब्रानी 1:2-3, संसार परमेश्वर से शत्रुता रखता है क्योंकि वह उसे गलत समझता है। परमेश्वर के सच्चे राजदूत बनकर, जो उसके प्रेम के चरित्र को प्रतिबिंबित करते हैं, उस धारणा को बदलना हमारा काम है। पौलुस यह बतलाता है 2 कुरिन्थियों 5:17-21 में, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के चरित्र को दर्शाने आया, और आज मसीह लोगों को जो यीशु मसीह में है उसका चरित्र को दर्शाने के लिए कहता है कि लोग परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के चरित्र को उसके शिष्यों में, उसके चेलों में देख सके और परमेश्वर को महिमा कर सके। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1:14-15 में, यहाँ लिखा है, वचन जो यीशु मसीह को बोध करता है, वचन देहधारी हुआ, वह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में निवास करने आया, और हमने उसकी महिमा देखी, ऐसी महिमा जो पिता के इकलौते पुत्र के योग्य है। और पद 18 कहता है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु परमेश्वर के इकलौते पुत्र जो पिता के हृदय से, जो पिता के हृदय के सबसे निकट है, उसी ने उसे प्रकट किया है। यूहन्ना 1:18। यूहन्ना चाहता है कि हम इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाएं कि जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु में हम पूर्ण ईश्वरत्व को पहचानते हैं। वह देहधारी परमेश्वर था। हमने पढ़ा, यह मिलता है यूहन्ना 1:1-4 पद में। वह पिता के साथ एक था और अनंतकाल से उसके साथ विद्यमान था। यूहन्ना 15:26 में पवित्र आत्मा के साथ यीशु के रिश्ते का अच्छा वर्णन मिलता है। पवित्र आत्मा को यीशु द्वारा उसकी गवाही देने के लिए भेजा जाता है। दूसरे अंश में यीशु कहते हैं कि पिता सांत्वना देने वाले को भेजेगा, यूहन्ना 14:26। इस प्रकार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच पूर्ण सहयोग प्रतीत होता है। तीनों व्यक्तियों के बीच यह पूर्ण सहयोग मसीह के शिष्यों को शक्तिशाली रूप से उनकी गवाही देने और उद्धार का शुभ समाचार फैलाने में मदद करने के लिए है। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा एक साथ मिलकर हमें उद्धार करने का काम करते हैं। आइए हम परमेश्वर पवित्र आत्मा के विषय कुछ पढ़े और जाने। आइए हम पढ़े 2 कुरिन्थियों 13:14-15 पद। यहाँ हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। यहाँ पर 3 गुना आशीर्वाद दिया गया है। पौलुस प्रेरित मसीहों को 3 गुना आशीर्वाद का यहाँ पर जिक्र करता है और आशीष देता है। यीशु के जन्म और बपतिस्मा में पवित्र आत्मा का भूमिका बहुत खास था। इसे हम लूका 1:35-3:21-22 पद में भी पाते हैं। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, ना कि केवल एक प्रभाव। इसके विषय में शास्त्र हमें बतलाती है, बाइबल हमें बतलाती है। इसे हम कुछ पदस्थलों से समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम ये 3-4 पदस्थलों को देखें। पहला है, पहला तिमोथियस 4:1 में कहता है कि पवित्र आत्मा बोलता है। दूसरा रोमियो 8:26 में कहता है कि पवित्र आत्मा मध्यस्थता करता है। तीसरा प्रकाशित वाक्य 22:17 में हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा आमंत्रित करता है, लोगों को आमंत्रित करता है, लोगों को परमेश्वर के राज्य में उसके नजदीक आमंत्रित करता है। चौथा हम पढ़ते हैं इफिसियों 4:30 में कि पवित्र आत्मा भावनाओं को महसूस करता है। पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक के जीवन में महत्वपूर्ण कार्य करता है। वह हमारे जीवन में आत्मा का फल देता है और हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का चरित्र लाता है। पवित्र आत्मा विश्वासी के जीवन में कार्य करता है ताकि हम परमेश्वर के पुत्र की छवि के अनुरूप बन सके, रोमियो 8:29 कहता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के चरित्र के जैसा बन जाए। यह हमारे नए जन्म के क्षण में नहीं किया जाता है, यह केवल लंबे कार्य की शुरुआत है। जब तक कि मसीह तुम्हें ना बन जाए, कहता है गलातियों 4:19। यह लगातार लंबे समय तक काम करता है, हमारे जीवन में निरंतर काम करता है यीशु मसीह का छवि को हमारे जीवन में लाने के लिए। फिर वह दिन आएगा जब सम्राटों का सम्राट हमारे लिए आएगा और पूरा काम एक पल में सामने आएगा। आगे हम देखते हैं 1 तिमोथियस 3:16 में यहाँ कहता है, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वजह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। यह ईश्वरत्व के मनुष्य के उद्धार कार्य पर जोर देता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मनुष्य बनकर आया, हमारे उद्धार के लिए आया। ईश्वरत्व का रहस्य महान है। मसीह के जीवन में ऐसे रहस्य हैं जिन पर विश्वास किया जाना चाहिए, भले ही उन्हें समझाया ना जा सके। उद्धार का कार्य में भी यह रहस्यमय लगता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अपना कार्य, अपना करुणा, रहस्यमय रूप से करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम इसमें दिखाई देता है। वे लोग मनुष्य के उद्धार के लिए मिलकर काम करते हैं। यह बहुत ही रहस्यमय प्रकार का है। क्या आपने पिता को अपना मित्र बनने दिया है? क्या आपने पुत्र के माध्यम से उद्धार की सुंदरता के लिए अपना मन खोल दिया है? क्या आपने अपना जीवन पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन और सेवकाई के लिए समर्पित कर दिया है? क्या आपने अपने उद्धार प्रदान करने वालों को अपने जीवन का शासक बनने दिया है? आइए प्यारों, यदि हमने परमेश्वर को अपने जगह में जगन अपने दिल में जगह नहीं दिए हैं, तो उसे आज हम अपने हृदय में जगह दें कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अपने अनुग्रह से, अपने प्रेम से हमारे जीवन में काम करे और हमें उद्धार दे। परमेश्वर हमारे साथ हो। परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। पिता परमेश्वर, मेरे श्रोताओं ने जिसने आज तेरे वचन को जिन्होंने आज तेरे वचनों को सुना है, उन्हें तू मदद कर तेरे प्रेम को, तेरे संवाद को समझ सके और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और तेरा प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति को महसूस कर सके। हम सबों को आशीर्वाद दे पिता। हम सबों को तेरा नजदीक ला और हम सबों को तेरा राज के तैयार कर, क्योंकि इस विनती को हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।